आप हैं SBS हिंदी के साथ।
भारत में कोरोना संकट की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले दो दिनों से नए मरीजों के मुकाबले ठीक होने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। कई राज्यों में स्थिति लगातार सुधर रही है। उत्तर प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या में लगातार कमी आ रही है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग में अधिकारी अमित मोहन प्रसाद इस बारे में जानकारी देते हुए कहते हैं,
30 अप्रैल को हमारे प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 3,10,783 थी, तो इस प्रकार 30 अप्रैल से आज 11 मई 11 दिनों में एक्टिव केसेस की संख्या में 94,500 से अधिक केसेस की गिरावट हुई है। ये जो संक्रमण में गिरावट दिखाई पड़ रही है, संक्रमण की दर में और संख्या में, ये सरकार के और आपके साझा प्रयास के कारण हो रहा है। आप अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और साथ ही साथ जो कदम सरकार को उठाने हैं टेस्टिंग के लिए, सर्वेलेंस के लिए, ट्रैकिंग के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, वो स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग और अन्य विभागों के द्वारा किया जा रहा है। संक्रमण के पश्चात अब तक 13,13,112 व्यक्ति संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और स्वस्थ हो चुके हैं।
13 राज्यों में अभी भी एक्टिव केसेस की संख्या 1,00,000 से अधिक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल का कहना है कि मध्य प्रदेश में भी अब 1,00,000 से ज्यादा सक्रिय मामले हो गए हैं।
1,00,000 से अधिक एक्टिव केसेस देश में अभी 13 स्टेट्स में हैं, 50,000 से 1,00,000 एक्टिव केसेस 6 स्टेट्स में हैं और 50,000 से कम एक्टिव केसेस 17 स्टेट में हैं। यहां हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, पिछले कुछ दिनों तक करीब 12 स्टेट ऐसी थी जहां पर कि 1,00,000 से अधिक एक्टिव केसेस थे। मध्य प्रदेश एक नई स्टेट उसमें ऐड हुई है जहां पर कि एक्टिव केसेस की संख्या में बढ़ोतरी नोट की गई है। साथ ही अगर हम केस पॉजिटिविटी को एनालाइज करें तो देखते हैं कि 26 स्टेट ऐसी हैं देश में जहां पर कि इन्फेक्शन का थोड़ा वाइडर स्प्रेड नोट किया गया है, दैट इज कि वहां पर पॉजिटिविटी 15% से अधिक है। 5 से 15% पॉजिटिविटी वाली स्टेट्स 6 हैं और लेस देन 5% पॉजिटिव वाली स्टेट्स 4 स्टेट्स हैं देश में। इसमें भी हम देखें तो पाते हैं कि 9 स्टेट ऐसी हैं जहां पर कि 25% से अधिक केस पॉजिटिविटी नोट की गई है।
कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए शुरुआती जांच और आइसोलेशन को महत्वपूर्ण बताते हुए ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव कहते हैं,
अर्ली टेस्टिंग एंड आइसोलेशन एंड होम बेस्ड केयर इज द की टू कंट्रोल दिस ट्रांसमिशन और ब्रेक द चेन। आई रिपीट, अर्ली टेस्टिंग एंड आइसोलेशन, सो वी हैव टू समटाइम्स वेट फॉर द रिजल्ट, सो दैट इज अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम, दैट इज व्हाई वी हैव कम आउट विद दिस एडवाइजरी एंड वी हैव गिवन इट टू ऑल द स्टेट्स ऑल्सो। The RT-PCR testing capacity is about 16,00,000 per day in our laboratories and rapid antigen test capacity is also around 17,00,000 per day and that is the production. We have about 13 companies available on GEM and we were the first country to use the rapid antigen test in June of last year and that got approved by WHO in September. So we have been using much ahead of the curve for the rapid antigen tests and laboratories have been working 24/7 टू मीट द टेस्टिंग डिमांड।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि राज्य में हालात सुधर रहे हैं। सुधरते हालात के बीच जिम्मेदारियों को लेकर राजनीति भी तेज हो रही है। भाजपा ने दिल्ली के बदतर हालात के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहती है,
जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसमें MCDs अब तक 150 सेंटर्स चला रही थी। एक तरफ वैक्सीनेशन का हल्ला किया हुआ है और दूसरी तरफ 60 वैक्सीनेशन सेंटर्स को बंद कर दिया है और लगातार एडवर्टाइजमेंट आ रहा है दिल्ली में यूनिवर्सल वैक्सीनेशन जो है वो अरविंद केजरीवाल प्रोवाइड करने वाले हैं। ना तो अभी तक कोई ग्लोबल टेंडर किया है, ना कहीं से वैक्सीन का प्रावधान किया है।
दिल्ली में ICU बेड की कमी को लेकर केजरीवाल सरकार को घेरते हुए मीनाक्षी लेखी का कहना है,
असलियत में तो लोगों को लगातार धोखा देना ही इनकी आज की तारीख में रणनीति रह गई है। आप बात करो ICU बेड्स की, तो दिल्ली के अंदर ICU बेड्स की संख्या कतई नहीं बढ़ी है, और जो प्रधानमंत्री रिलीफ फंड के वेंटिलेटर्स आए थे केवल वही वेंटिलेटर्स दिल्ली इस्तेमाल कर रही है, उसके अलावा एक भी वेंटिलेटर पिछले साल में नया नहीं खरीदा गया है। और ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर कोई 1.5 करोड़ रुपया खर्चा था, शायद वही ऑक्सीजन सिलेंडर है जो इनके एमएलएस के घर से बरामद हो रहे हैं। और नहीं तो ऑक्सीजन की भी किल्लत, आज भी अस्पतालों को आप देखिए, ये जैसे ड्राउट सिचुएशन थी ना, मैं आपको वापस अमर्त्य सेन की थ्योरी पे लेके जाना चाहती हूं कि ड्राउट कंडीशन के अंदर जो भुखमरी पैदा होती है वो भुखमरी पैदा इसलिए नहीं हुई कि अनाज नहीं है, भुखमरी पैदा हुई कि जिनको जरूरत है उन तक पहुंचाने की व्यवस्था नहीं है। ठीक उसी तरीके से दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की हालत इन्होंने कर रखी है।
आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। वैक्सीन के निर्यात को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए मनीष सिसोदिया कहते हैं,
अगर मार्च के महीने में भारत सरकार ने ये डिसाइड कर लिया होता, केंद्र सरकार ने डिसाइड कर लिया होता कि हम वैक्सीन विदेशों को बेचने की जगह अपने देश के लोगों को लगाएंगे, तो 6.5 करोड़ वैक्सीन अब तक हमारे देश के लोगों को और लग गई होती। ये 6.5 करोड़ लोग जिनको वैक्सीन लग गई होती, ये खुद भी सुरक्षित होते और दूसरों को भी कोरोना फैलाने से बचते। लेकिन अपने देश के लोगों को वैक्सीन लगवाने की जगह भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने तय किया कि हम पाकिस्तान को भेज देंगे, अफगानिस्तान को भेज देंगे, ईरान को भेज देंगे, बांग्लादेश को भेज देंगे, श्रीलंका को भेज देंगे, ओमान को भेज देंगे, ईरान को भेज देंगे, अपने देश के लोगों को वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। ये सबसे बड़ी गलती हुई है भारत सरकार से। भारत सरकार को इस बात को मानना चाहिए कि हमें विदेशों में नहीं भेजनी चाहिए थी। आज भारतीय जनता पार्टी एक नया शिगुफा लेके आई है, कह रहे दिल्ली सरकार ने इंटरनेशनल टेंडर नहीं किया, कह रहे दिल्ली सरकार को इंटरनेशनल टेंडर करना चाहिए था, ग्लोबल टेंडर करना चाहिए था और वैक्सीन ले आनी चाहिए थी।
राजनीतिक दलों के बीच जारी आरोप प्रत्यारोप या तू तू मैं मैं के बीच आम लोगों की स्थिति अब भी दयनीय बनी हुई है। स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच न होने के चलते रोजाना सैकड़ों लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्व रत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।
लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें। SBS हिंदी को फेसबुक पर फॉलो करें।